اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے، بلکہ سورہ کوثر سے آگے پڑھیں گے. اب اس کے بارے میں ایک تو کچھ روایات ہیں، ذرا ان روایات کو ایک نظر ڈال لیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جب فوت ہوئے تو اللہ رب کریم نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی. اب اس بارے میں مطلب ہے کہ عجیب و غریب میرے تحفظات ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے بندے کو اس طرح سے تسلی دینے کی کیوں ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ میری عقل نہیں مانتی، کیونکہ وہ بندہ جو کائناتوں اللہ کا نائب ہے، افضل البشر ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اس کے مفاہیم پہ ہم براہ راست غور کریں. تو اب دیکھیں نا، ایک وزیر اعظم کے درجے کا بندہ ہو اور آپ اس کو سکا گیری پہ لگا دیں کہ ساقی کا اثر بنا دیں، کہ وہ بیٹھا ہم جیسے گندے شکلوں والے لوگوں کے پانی پلا رہے ہوں، بات میری عقل نہیں مانتی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں، انا آتائنا کا، آپ کو عطا کیا گیا کوثر. کوثر کسر سے ہے. اگر ہم اس کا مفہوم لیں وہ حوض کوثر، بات کوئی بڑی ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ویسے آپ کوثر اکثر مفسرین نے سے خیر کثیر کہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خیر کثیر عطا کیا گیا. اب خیر کثیر یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یوں سمجھیں کہ وی ہیو بین بلیسڈ ود دا بیسٹ آف ریزلٹس، یعنی ہماری ایفرٹس چونکہ ود اے کلیئر ہیڈ ہوں گی، اگر ہمارے کانسیپٹس درست ہوں گے تو ہم جو بھی کوشش کریں گے اس کے ریزلٹس بہت شاندار ہوں گے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ انا آتائنا کل کوثر، کہ آپ کو بہترین ریزلٹس عطا کیے گئے. ف پس لہذا صلی لرب کا ونہر، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہوں. ون ہر اور ایثار کریں. اب قربانی کا لفظ جو ہے وہ قرب سے ہے، کسی کام کو کرنا اس طرح سے کرنا کہ کسی کی قربت حاصل ہو، اس کو قربانی کہتے ہیں. یہاں پہ ون ہر جو ہے یہ بیسیکلی وہ اونٹ کی قربانی کو کہا گیا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے. اب دیکھیے، اللہ کی صفت ربوبیت جو ہے وہ سنبھالے ہوئے پوری کائنات کو، تو جب ہم اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور ایثار کریں گے. ایثار کا لفظ جو ہے یہ اثر سے ہے. اثر سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے نتائج مرتب ہوں، کوئی اثر ہو، جس کی کوئی تاثیر ہو. ان شان کا، اور جو ایسا نہیں کرتے ہو ول ابتر، ان کی کوششیں فروٹ لیس رہتی ہیں. دے ول بیئر نو فروٹس، ریزلٹ لیس. ابتر کا مطلب دم کٹا کیا، اور اس وجہ سے حضور پہ باندھ دیا کہ جی ان کی تو دم کٹ گئی. نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیے کہ جن کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں. مطلب مثال ہے کہ میں اپنے دادا کے والد کا نام نہیں جانتا، تو اتنی تو ہماری عقل ہے یا اتنی تو یادداشت ہے. کتنے لوگ ہیں؟ چند ہی لوگ ہیں جنہیں دادے کے دادے کا نام پتا ہو، یعنی چار نسلیں نہیں ہم جانتے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام میں اقدس جو ہے وہ 1400 سال سے لوگوں کے ذہنوں میں روشن ہے. तो ये देखिए किस सलीके से उन्होंने मतलब बात को बिगाड़ दिया। अगर आप इसे यूं देखें कि अल्लाह तबारक व ताला इस सूरत में ये फरमा रहे हैं कि आपको बेहतरीन रिजल्ट अता किए गए हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप अल्लाह के सिफत रबूबियत के निज़ाम से वाबस्ता हों और इसार करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बताइए कितनी जामे और कितनी खूबसूरत बात, और उसका क्या बाजा बजा दिया। यहाँ सारे कौसर के हौज से इकट्ठा होने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहरहाल अगली सूरत है जी सूरह काफिरून। ये कुफर जो है ये एक एटीट्यूड है, कुफर एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड कैसा है कि मैं देखे ना, अबू जहल को हम काफर कहते हैं। काफर का मतलब है कि वो बात नहीं मानता था, यानी बात का इनकार करने वाला। इनकार क्यों करता है? क्योंकि उसके अपने मफादात होते हैं, उसके अपना व्यू पॉइंट होता है, वो जिस चीज को बेहतर समझता है वो कहता है मैं यही करूंगा, वो अपनी ही करता है। ये है असल में काफर होना। अगर हम ये तर्जमा आम कर दें तो यहाँ पता चलेगा कि हम सब इल्ला माशाल्लाह, सभी अपनी अपनी कर रहे हैं, तो हम क्या हुए? लिहाजा चूंकि अपने पे बोझ आता है, लिहाजा हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं वो एक था जो करता था, या कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो इनकार करते थे। तो ये बात को हम उठा के उधर फिट कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बे करीम क्या फरमा रहे हैं, कुल या अयो हल काफिरून, यानी है अपनी करने वालों, ला अबदु माताबुदून, ला अबदु मैं नहीं मानता, माताबुदून जो तुम मानते हो, जिसकी बात तुम मानते हो, जो तुम मानते हो वो मैं नहीं मानता। वला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम मानोगे, मा आबुद जो मैं मानता हूं। वला अना आबिदुन, और ना मैं उसकी मानूंगा, मा आबुद तुम जिसकी तुम मानते हो। वला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम मानोगे उसकी, मा आबुद जिसको मैं मानता हूं, यानी जिस तरह से मैं मानता हूं और जिसकी मैं मानता हूं। इन दोनों को ना उस तरह तुम मानोगे, ना उसकी मानोगे जिसकी मैं मानता हूं। तो फिर आगे आखिरी जुमला क्या कहा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा सिस्टम, वलिया दीन और मेरे लिए मेरा सिस्टम। ये एक असूली बात है, एक बहुत शानदार एटीट्यूड है कि आप अपनी ना करें, बात को उस तरह माने जिस तरह कहा जाता है, और उसकी माने जिसकी माननी चाहिए। ये है इसका असल मैसेज। लेकिन हम ने जो इसका तर्जुमों में हशर किया है वो आपके सामने है। अब एक और तमाशा देखें सूरह नसर में। अब जरा गौर करें, इजाजा नसरुल्लाह वल फतह। अब ये तर्जमा जो किया गया है पहले वो सुन लें, जब अल्लाह की मदद आ जाए और तुम्हें फतह नसीब हो जाए, वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, और आप देख लें कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज या जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं, तो फसब्बे बेहमद रब्बे का वस्तगफिरहु इन्नहु काना तवाबा, तौबा करो, तस्बीह करो और अस्तगफार करो, और वो बड़ी तौबा कबूल करने वाला है। यानी कि ये तुमने क्या किया, ये मतलब हुआ तौबा, नाउज़ बिल्ला। लेकिन क्या अजीब मफहूम बनता है। अब इसका असल मफहूम सुन लें, इसका असल मफहूम ये है, इज़ा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह मदद करने पे आ जाए, जब अल्लाह आपकी मदद करे, वल फता और आपका जहन खोल दे, ऐसा खोल दे, फतह खोलने को कहते हैं, वह रायत नासा और आप देख लें लोगों को कि वो दाखिल हैं, फी दीन अल्लाह के सिस्टम में, ग्रोह दर ग्रोह, अल्लाह के सिस्टम में लोग ग्रोह दर ग्रोह काम कर रहे हैं। ग्रोह दर ग्रोह से क्या मुराद है? देखे ना, किसानों का एक ग्रोह है, आढ़तियों का एक ग्रोह है, तिजारत ताजर लोगों का एक ग्रोह है जो गल्ला खरीदते हैं और बेचते हैं, फिर कहीं कोई पीस के बेच रहा है, ये पूरा एक ग्रोह, एक निज़ाम काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का एक ग्रोह है, मेडिकल के काम करने वाले शोबे से जो लोग हैं उनका एक ग्रोह है, इसी तरह इंडस्ट्रियल्स का अपना एक ग्रोह है, इसी तरह यानी दुनिया में हर निज़ाम जो है ग्रोह दर ग्रोह दर ग्रोह काम कर रहा है। फसबे, तो आप पस, लिहाजा आपको चाहिए कि आप भी ड्यूटी से लग जाए। सभा का मतलब है ड्यूटी देना। बेहमद रब्बे का, अपने रब की तारीफ के साथ उसको सराहते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए अपने काम से लग जाए। वस्तगफिर हु, और बख्शिश नहीं होता, यह बख्शिश का कोई निज़ाम ही नहीं है। बख्शिश का क्या मतलब है कि आपको काम से एग्जम्प्ट कर दिया जाए? बख्शिश का क्या मतलब हुआ कि आपको माफ कर दिया जाए कि जी चले इसको काम नहीं करना, इसने काम नहीं करना, इसे नहीं काम लेना, ये क्या बात हुई? नहीं, असल में अस्तगफर का असल मतलब है अस्तगफार का कि आपका जहन बड़ा हो जाए। फसबे बेहमद रब्बे का, लिहाजा आप अपने रब को सराहते हुए काम से लग जाए और वो फिर क्या होगा उससे? वस्तगफिर हु, वो कर देगा आपका जहन बड़ा, और भी बड़ा करेगा। इन्हीं खोल तो दिया, अब वो बड़ा करेगा। इन्नहु काना तवाबा, और हमने उसी की तरफ पलटना है, हमें उसी की तरफ रजू रखना चाहिए। अब गौर करें जरा क्या मफहूम बना इसका। जी काफी है या एक और आगे पढ़ा दूं? जी किसका? जी जी आहा आहा, खूबसूरत बात है। आपने किताब कुरान हकीम और लाशौर में कुल हो अल्लाह वाली वो आयत नहीं पढ़ी ना, उसकी तशरीह नहीं पढ़ी। मैं कई चीज़ें अज्यूम कर लेता हूँ, मेरा ख्याल था सब ने वो पढ़ ली हुई है। देखिए उसमें हमने ये, कोई बात नहीं, दोबारा याद, मैं याद दहानी करा देता हूँ। देखिए अब अल्लाह रब्बे करीम ने हज़रत जिब्राइल से कहा कुल, यानी इन्हें जाके कह दो, ठीक है। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से कहा कुल, यानी आप कह दीजिए। अब उन्होंने कह दिया, किसको? जो सामने मौजूद लोग थे। और अब जब जो सामने लोग मौजूद थे उनको कहा कुल, उन्होंने आगे कह दिया। लेकिन जब मैं नमाज में ये सूरत पढ़ रहा हूँ कुल या युहल काफिर हूँ, मैंने क्या अर्थ किया कि कुफर जो है ये एक एटीट्यूड है। कहा असल में जब मैं नमाज में जब खुद ही खुद चुपके चुपके पढ़ रहा हूँ तो मैं किसको कह रहा हूँ? मैं अपने नफ्स को कह रहा हूँ ना। हाँ, ये ऑटो सजेस्टिव हो गया, यानी कि मैं खुद को समझा रहा हूँ कि मुझे, मेरा इनर सेल्फ मुझे कहे या लोगों को कहे। गौर करें जरा, यानी इसके पीछे असल राज ये है। लेकिन इसकी जो एक तौजी हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाई थी, उन्होंने कहा भाई हम तो हजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी में कहते हैं। ये गौर करें कि हम उनकी तर्ज फिक्र को अपनाने के लिए भी कह रहे हैं, तो इसके गोया दोहरे रीपर का यानी के इम्प्लीकेशन हो गई, इसकी दोहरी हो गई। एक तो मेरे जहन में है कि मैं हजूर अपने नबी, अपने राहबर, अपने हादी, अपने पैगंबर जिनको मैं मानता हूँ उनकी तर्ज फिक्र को फॉलो करते हुए मैं कह रहा हूँ। किसको? जाहिर है मैं खुद को कह रहा हूँ, ठीक हो गया। या ये कि अल्लाह रब्बे करीम मुझे बराए रास्त कह रहा है। असल में टारगेट कौन है? टारगेट है मैं। इस किताब का पहला चैप्टर क्या कह रहा है? उसमें मैंने यही बात अर्ज की कि हमें अगर कुरान को समझना है तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये किताब मेरे लिए है। ये जो जुमला है कि ये आज से 1400 साल पहले हजूर अलैहिस्सलाम पे नाजल हुई, इसकी थोड़ी सी रिफ्रेज कर लें इस जुमले को। इस जुमले को अगर हम रिफ्रेज कर लेंगे कि ये किताब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब तरीन बंदे के जरिए मुझ तक पहुंचाई है, इसका टारगेट मैं हूं, दिस इज फॉर मी, तो एक तो ये बात तय हो गई कि ये तरतीब नजूली और तरतीब मकतूबी का झगड़ा भी मुक गया कि अल्लाह ने उनको जिस तरतीब से बताया वो उनके लिए था। जब इसे तरतीब मकतूबी में लिख दिया गया तो ये मेरे और आपके लिए हो गई कि नहीं। जब हमारे जहन में ये तसव्वुर होगा कि अल्लाह का कलाम मुझ तक अल्लाह ने अपने महबूब तरीन बंदे के जरिए भेजा है, तो देखिए इसमें दो चीजें जमानी और मकानी फासले हजफ हो गए, वरना 1400 साल पहले उन पर नाजिल हुई, यानी कि मैंने खुद को डिसोसिएट कर लिया। लेकिन जब मैं कहता हूं ये मेरे लिए है, ये मुझ मेरी खातर अल्लाह तबारक व ताला ने एक इंतजाम के तहत मेरी रहनुमाई के लिए मेरी जहनी तरबियत का एक डॉक्यूमेंट मुझ तक पहुंचाया है, तो जाहिर है कि मेरी अप्रोच पर्सनल हो गई, पर्सनल हो गई। अब मैं इसमें दिलचस्पी लूंगा इसलिए कि ये मेरे लिए है। यह है पहला जुमला, ठीक है जी। अब जरा ये हो गया, अब ये सूरह लहब की इजाजत दें मैं जरा ये भी आज देखें, जरा गौर करें आप और हम, ये पढ़ते आ रहे हैं तब्बत यदा अभी लहब व तब, टूट गए उसके हाथ और वो तबाह हो गया, मा अगना, वो मतलब अभी लहब वो शोलों का बाप, और हमने कहा कि अभी लहब नामी एक बंदा था, उम्मे जमील यानी जमील की वालदा जो है वो उसकी वाइफ थी, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, और उसके काम ना आया उसका माल, सैयद सला नारा जातन लहब, और वो आग में धंसा जाएगा, ठीक है, या जुड़ेगा, वह अमराता और उसकी बीवी हमालतल हतब, उसके लिए ईंधन इकट्ठा करेगी, फी जीदेहा हबल में मसद, उसके गले में मूंज की रस्सी, अंदाजा करेंगी। अब इस तर्जमे को आपने सुन लिया, क्या दिल पे असर हुआ? अब सुनिए जरा इसका असल मफहूम, जरा गौर करते जाइए। तब्बत यदा यानी हाथ टूट गए या बेकार हो गए, यदा हाथ, अभी लहब हर वो बंदा जो शोलों का बाप बना हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, सुरख हुआ हुआ है, उसकी तरफ क्यों नहीं ले जाते? हर वो बंदा जो शोले का बाप बना हुआ है यानी कि बहुत ही गुस्से में रहता है, उसके क्या होता है, आजाब बेकार हो जाते हैं, वो काम ही नहीं प्रॉपर कर सकता, व तब, और क्या होता है, सारा काम उसका बिगड़ जाता है, मा अगना काम नहीं आता, अनहु उसके, मालहु उसका माल, व मा कसब और जितने उसमें गुण होते हैं, जितने उसकी कर्तव्य होते हैं, जितने भी हुनर वो जानता हो, कोई काम आता है उस वक्त जब बंदा गुस्से में हो? नतीजा सैयद सला नारन जाता लहब, तो नतीजा ये कि वो जा जुड़ेगा किससे, वो आग जो शोलों की तरह भड़क रही है, यानी गुस्से वाले बंदे का अंजाम बता दिया। वह अमराता हूं हमालतल हतब, और उसकी बीवी उसके गुस्से की आग के लिए ईंधन उठा के लाती रहेगी, यानी कि वो उसको और इरिटेट करती है। हमाला तल हतब, हमल कहते हैं उठाने को, वजन को, हतब कहते हैं वो लकड़ियां या वो ईंधन या खाशाक, फी जीदेहा हबलम में मसद, और ऐसा बंदा उसके गले में ऐसे होता है जैसे मूंज की रस्सी, यानी उसे बहुत एजियत दे रहा होता है। गौर करें जरा असल में क्या बताया गया, कहा यह गया है कि गुस्सा करने वाला बंदा नुकसान में रहता है, बताया ये गया है कि उसका ना माल काम आता है, ना उसकी दौलत काम आती है, ना उसके हुनर काम आते हैं, और वो अल्टीमेटली आग में ही जलता रहता है। और उसकी बीवी ऊपर से क्योंकि वैसी ही होती है लिहाजा वो उसको चिढ़ाती रहती है, और वो बंदा जो है वो खुद उसके गले का तौक बना रहता है, उसी को सबसे ज्यादा अजियत देता है। गौर करें क्या कानून बता दिए, लेकिन हमने और आपने इसका क्या हशर किया, ये खुद को डिसोसिएट करके पढ़ने और एसोसिएट करके पढ़ने में इतना फर्क पड़ जाता है। जी जनाब, ये कल इंशाल्लाह हम बाकी का पढ़ देंगे, ठीक है, ये आज ही खींच दूं। हेलो जी, चलें कल की क्लास रहने देते हैं ताकि वरना बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये जो मफाहीम का नयापन है इसको जरा तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत इसके और राज खुलेंगे। अल्लाह खुश रखे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।